نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم اللہ تعالیٰ کی توفیق اور اس کی رحمت سے خلاصہ قرآن کے سلسلے میں 21 پارے کا سیکنڈ روب شروع کریں گے آیت نمبر 28 سورة روم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم وہ تمہیں خود اپنی ہی ذات سے ایک مثال دیتا ہے کیا تمہارے ان غلاموں میں سے جو تمہاری ملکیت میں ہیں کچھ غلام ایسے بھی ہیں جو ہمارے دیے ہوئے مال و دولت میں تمہارے ساتھ برابر کے شریک ہوں اور تم ان سے اس طرح ڈرتے ہو جس طرح آپس میں اپنے ہمسروں سے ڈرتے ہو اس طرح ہم آیات کھول کھول کر پیش کرتے ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں مگر یہ ظالم بے سوچے سمجھے اپنے ہی خیالات کے پیچھے چل پڑے ہیں اب کون اس شخص کو راستہ دکھا سکتا ہے جسے اللہ نے بھٹکا دیا ہو اور بات کیا ہے کہ ایسے لوگوں کا تو کوئی مددگار نہیں ہے۔ سورۃ روم میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مثالیں بہت ساری ہیں اور تمثیل کے ساتھ بات سمجھانا یہ کسی کی محبت کی بھی علامت ہوتی ہے، مطلب یہ ہے کہ وہ ہر ممکن کوشش کر رہا ہے آپ کو اپنی بات سمجھانے کی، اور انسانی فطرت بھی اس کا تقاضا کرتی ہے کیونکہ جب انسان کسی چیز کو اپنے تصور میں دیکھ لیتا ہے تو پھر اس کو سمجھنا اور ماننا آسان ہو جاتا ہے۔ دوسری بات دیکھیے کہ ان آیات میں شرک اور توحید کا فرق بہت خوبصورت طریقے سے بیان کیا گیا کہ ہم اپنے ملازموں کے لیے تو ایسا نہیں سوچتے، تو کیا اللہ تعالیٰ کے بندے جو ملازم بھی نہیں ہیں، خالق اور مخلوق کا فرق ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کرے گا کہ ان کو برابر کر دے اور تم اس طرح کی باتیں کرو؟ اصل بات یہ ہے کہ اگر انسان فطرت پہ چڑھے ہوئے سارے پردے ہٹا کر بات سمجھے تو اس کو بات سمجھ آ جاتی ہے، لیکن اگر کوئی نہ سمجھنا چاہے تو پھر جتنا مرضی کوشش کر لے انسان اس کو بات نہیں سمجھ آ سکتی۔ اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ ذات جس نے تم کو بنایا، جس نے تمہاری فطرت کو بنایا، وہی ذات ایسی ہے کہ جو تمہارے لیے اس وحی کو نازل کرتی ہے۔ اسی لیے اب اللہ کے نبی کے ذریعے ہم سب کو حکم دیا، فقیم وجھک للدین حنیفہ، پس اے نبی اور نبی کے پیروکارو یکسو ہو کر اپنا رخ اس دین کی سمت میں جما دو، قائم ہو جاؤ اس فطرت پر جس پر اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا۔ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت بدل نہیں سکتی، یہی بالکل راست اور درست دین ہے، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے۔ کیا ہے فطرت کا تقاضا؟ منیبین الیہ واتقوہ واقیموا الصلاۃ، قائم ہو جاؤ اس بات پر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہوئے، اور کیا کرتے ہوئے؟ اور ڈرو اس سے اور نماز قائم کرو، اور نہ ہو جاؤ ان مشرکین میں سے جنہوں نے اپنا دین ہی الگ بنا لیا اور گروہوں میں بٹ چکے ہیں، ہر ایک گروہ کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی میں مگن ہے۔ جس ذات نے ہمیں بنایا، ہماری فطرت کو بنایا، اسی نے قرآن کو نازل کیا، لہذا قرآن ہماری فطرت کے بالکل قریب ہے۔ یہاں جس فطرت کی بات ہے یہ توحید کی فطرت ہے، اطاعت کی فطرت ہے، یکسو ہونے کی فطرت ہے، سب سے کٹ کر رب کا ہونے کی بات ہے۔ ہماری فطرت، چاہے وہ کوئی اپنے آپ کو کسی نام سے منسوب کرے انسان، ہر ایک کی فطرت لا الہ الا اللہ کو مانگتی ہے۔ جیسے بھوک لگے تمہارا پیٹ کھانے کو مانگتا ہے، آکسیجن پھپھڑوں کی غذا ہے، اسی طرح ہماری ذات، ہماری فطرت اللہ کی محبت، اللہ کی بندگی کو چاہتی ہے۔ لیکن جب لوگ ان کو چھوڑ کر دوسری طرف جاتا ہے تو اس کا ٹیسٹ خراب ہو جاتا ہے، بالکل اس بچے کی طرح جس کو آرٹیفیشل چیزوں پہ لگا دیں تو فطری چیزیں اس کو اچھی نہیں لگتی۔ تو لہٰذا جب انسان فطرت کو لے کر اس قرآن کو پڑھتا ہے تو اس کو واقعی لگتا ہے کہ اس سے زیادہ خوبصورت کتاب اور کوئی ہو نہیں سکتی تھی۔ پھر اس میں یکسو ہو کر اپنا رخ اللہ کی طرف کرنے کی بات کی گئی، یہ بہت مشکل ہوتا ہے، حتیٰ کہ انسان اللہ کی طرف آنے بھی لگ جاتا ہے پھر بھی مڑ مڑ کے پیچھے دیکھتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ شاید میں پیچھے رہ رہا ہوں، شاید لوگوں سے پیچھے ہو جاؤں گا، میں معاشرے سے کٹ رہا ہوں، میرے بچوں کے رشتے نہیں ہوں گے، یہ نہیں ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں ایک دفعہ یکسو ہو کے چلو، کسی ایسے ڈرائیور کا ذہن میں لائیے کہ جو گاڑی بھی چلائے اور مڑ مڑ کے پیچھے بھی دیکھتا رہے، تو حادثہ ہونے کا ڈر ہے۔ اسی قسم کے حادثے ہماری ابتدائی دینی زندگی میں بہت زیادہ ہوتے ہیں، حالانکہ ہم اس وقت چیخ رہے ہوتے ہیں ہائے میرے ساتھ یہ ہو گیا، لیکن اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم مڑ مڑ کے پیچھے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ جب چل پڑے تو پھر چل پڑے، اب کیا پیچھے دیکھنا اور کس طرف چلنا؟ اللہ سے بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ کسی چیز کا لالچ یا کسی چیز کا خوف جو ہے وہ ہمیں پیچھے مڑنے والوں میں نہ کر دے اور ہم سچے مخلص دین کے اوپر چل پڑے۔ پھر یہاں دیکھیے فرقوں کی بات کر دی کہ فطرت سے ہٹا ہوا طریقہ کیا ہے کہ لوگوں کو گروہوں میں بانٹ دو، ہر بندہ اپنے چھوٹے سے گروہ میں خوش ہو کر اسی کو دین کل دین بنا لے. اصل بات یہ ہے کہ انسان اگر ایک اللہ کو یاد رکھے تو اس کی ساری باتیں آپس کی جو ہیں چھوٹی چھوٹی وہ ختم ہو جاتی ہیں. اور مسلمانوں کو یہاں توحید پہ جڑنے کا بھی حکم دیا گیا ہے. اب فطرت کی کچھ جھلکیاں ہم دیکھیں گے. کیا؟ وَإِذَا مَسَّ النَّاسَ ضُرٌّ دَعَوْا رَبَّهُمْ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ. لوگوں کا حال یہ ہے کہ جب ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے اس کو پکارتے ہیں، پھر جب وہ کچھ اپنی رحمت کا ذائقہ ان کو چکھا دیتا ہے تو یکا یک ان میں سے کچھ لوگ شرک کرنے لگتے ہیں تاکہ ہمارے کیے ہوئے احسان کی نشکری کریں. اچھا مزے کر لو، ان قریب تم کو معلوم ہو جائے گا. کیا ہم نے کوئی سند اور دلیل اس پر نازل کی ہے جو شہادت دیتی ہو اس شرک کی صداقت پر جو یہ کر رہے ہیں؟ اب دیکھیے کہ دکھ میں انسان دوسروں سے بے نیاز ہو کے رب کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے دکھ کے وقت میں لوگوں کو اللہ کی طرف مڑنے کی بات کی. لیکن پتہ نہیں کیوں جب خوشیاں آتی ہیں تو اس وقت ایسے لگتا ہے کہ بس ہم اپنے خدا خود بن گئے. اس وقت انسان پھر سب کو بڑا سمجھتا ہے سوائے اللہ کے حکم کو اور اللہ کی بات کو. ایسے لوگ دن میں 5 بار نمازیں بھی پڑھ لیں لیکن اگر عملی زندگی میں ان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے کمزور ہے تو ان کی یہ نماز عبادات ان کے اندر کوئی زیادہ اضافہ نہیں کریں گی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ ام انزلنا علیہم سلطانا، کیا ہم نے اس کی کوئی سند نازل کی ہے جو شہادت دیتی اس بات کی، اس شرک کی جو یہ کر رہے ہیں؟ یعنی کس نے ان کو سکھایا کہ دکھ میں ادھر جانا اور غم میں ادھر جانا اور خوشیوں میں ادھر جانا؟ نہیں، تم اپنی آپ کو درست کر لو، ورنہ یاد رکھو کہ نہ غموں میں تم اللہ کی طرف رہو گے اور نہ خوشیوں میں رہو گے. پہلے غم کی بات کی گئی، اس میں انسان کا کیا رویہ ہوتا ہے، اور اب خوشیوں کی بات ہے. وَإِذَا ذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، جب ہم لوگوں کو رحمت کا ذائقہ چکھاتے ہیں. نوٹ کیجئے، رحمت بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، وہ صحت کی رحمت ہو، بچوں والی رحمت ہو، اللہ جو بھی کسی پر رحمت کر دے یہ اللہ کی طرف سے آتی ہے. تو کرتے کیا، وہ اس پر پھول جاتے ہیں، یعنی اکڑنے لگتے ہیں. ہاں جی، ہم ڈیزرو کرتے ہیں، دیکھو ہمارے گھر اب یہ بھی آ گیا اور ہم اتنے بڑے ہو گئے، یہ ہو گیا. یہاں پھولنے کا معنی بگاڑ کے معنوں میں، یعنی تکبر کرنے لگتے ہیں، اللہ کے حکم کو بھول جاتے ہیں. لیکن اس کے بعد، اور جب ان کے اپنے کیے کرتوتوں سے ان پر کوئی مصیبت آتی ہے، یہاں کرتوت کیا، ان کے پھول جانا، یعنی خوشی میں جب پھولے تو اس پھولنے پہ، اکڑنے پہ اور اللہ کو ناراض کرنے کے اوپر جب انہوں نے اتنے غلط کام کر دیے تو اس کے نتیجے میں پھر پکڑ آ گئی. یہ ہے نا اللہ کی بات. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے کہ خوشیوں میں اللہ کو نہیں بھول جانا چاہیے، اتنے چھچورے اور کم ظرف نہیں ہونا چاہیے، نہ شکرے نہیں ہونا چاہیے کہ جب ذرا سی تھوڑی سی کوئی دولت مل گئی، حسن مل گیا، 4 پیسے گھر میں آ گئے تو سوچنے لگے مجھے سرحاب کے پر لگ گئے، بس اب جو ملنا تھا مجھے اور ملے گا اور ملے گا. اللہ کہتے ہیں یہ دن ہم بدل دیتے ہیں. اس لیے انسان اس چیز کے اوپر اپنے آپ کو چیک کیا کرے، اور یہی ہے وہ چیز جو انسان کو پھر اس کی اصل اوقات یاد دلاتی ہے. کرتوتوں پہ مصیبت آئے تو کیا ہوتا ہے، یکایک وہ مایوس ہونے لگتے ہیں. کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے کہ اللہ ہی رزق کشادہ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے اور تنگ کرتا ہے جس کا چاہتا ہے؟ یقیناً اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. کیا پتا چل گیا کہ ایک انسان کو اللہ سے بہت دفعہ کام پڑنا ہے، اس لیے ہر موقع پر اللہ کو یاد رکھے. اور خاص طور پہ فاتذ القربا حقہ، پس اے مومن رشتہ دار کو اس کا حق دے اور مسکین اور مسافر کو اس کا حق دے. یہ طریقہ بہتر ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کی خوشنودی چاہتے ہوں، اور وہی فلاح پانے والے ہیں. جو سود تم دیتے ہو تاکہ لوگوں کے اموال میں شامل ہو کر وہ بڑھ جائے، اللہ کے نزدیک وہ نہیں بڑھتا. اور جو زکات تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے دیتے ہو، اسی کے دینے والے در حقیقت اپنا مال بڑھاتے ہیں. یہاں دیکھیں لفظ ربا آیا، ترتیب کے اعتبار سے یہ پہلی صورت ہے جس میں سود کی مذمت کی گئی تھی. یہ نوٹ کیجئے گا، سورت آل عمران 130 میں ہم دیکھ چکے، سورت البقرہ 275 سے لے کے 281 کی آیات کو ہم دیکھ چکے، اور یہاں پہ مکی سورت کے اندر سود کا تذکرہ کر کے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی ذہن سازی کی. اور حقیقت یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دور میں بھیجے گئے تھے تو مسلمانوں کے بیسک عقائد تک میں اتنی خرابی آ چکی تھی کہ سود گھر گھر میں پھیلا ہوا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس طرح سے آہستہ آہستہ اس کو کم کر دیا اور پیچھے کر دیا. یہاں سے آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز بھی پتہ چلتی ہے، اور وہ کیا ہے کہ جب بھی کسی چیز کو مکمل طور پہ ختم کرنا ہوتا ہے तो शुरू में उसके लिए हल्का सा इशारा कर देना चाहिए, लोगों का जहन बनाइए, उनको बताइए कि किस तरीके से ये काम होगा। लेकिन अफसोस की बात है कि लोग आज भी सूद के नाम पे मुख्तलिफ राय होते हैं। कुछ कहते हैं कुछ नहीं होता, सब जायज है। कुछ कहते नहीं, दीन के लिए जायज है, दुनिया के लिए जायज नहीं है। इसलिए कोई बात नहीं, हम दीन का इदारा तो सूद पे बना लेंगे लेकिन घर नहीं बनाएंगे। एक और गिरोह है, वो कहते हैं नहीं, दीन के इदारे में बिल्कुल सूद नहीं लगाएंगे, हाँ घर अपना एक ले सकते हो। और कुछ ने तो न जाने किस हद को पार किया। अल्लाह से दुआ कीजिए कि जिस बात को अल्लाह इतना खोल खोल के बयान करे, हम सब की जिंदगी में भी इस चीज के ऊपर अमल आ जाए। आज इज्तमाही तौर पर मुसलमानों के पिसे हुए होने की और कुफार के उभरने की बहुत बड़ी वजह यही है कि आज दुनिया में सूद और रिबा का निजाम है। आज अगर कोई एक यूनिवर्सल लेवल पे तहरीक चलाई जाए, पूरी दुनिया से इंटरेस्ट का निजाम खत्म किया जाए, तो पूरी दुनिया के अंदर अमन और चैन आएगा। ये किस्म की वर्ल्ड टेररिज्म है, इकोनॉमिकल डिसऑर्डर है, इकोनॉमिकली टेरराइज किया जा रहा है बड़ी बड़ी नस्लों और बड़े बड़े गिरोहों की तरफ से पूरी दुनिया के लोगों को। दूसरी इस आयत की तफसीर में मुफसरीन कहते हैं कि यहाँ सूद से मुराद वो सूद नहीं जो असल में सूद है, बल्कि इससे मुराद तोहफा है, अतिया, जो इस नियत से दिया जाए कि लेने वाला बाद में इसमें ज्यादा वापस करे। और आप जानते हैं कि रिबा का लफ्ज क्या है, बढ़ोतरी। सूद को भी तो सूद इसीलिए कहते हैं कि उसमें असल देकर उससे ज्यादा दिया या लिया जाता है। तो ऐसा तोहफा जो इस नियत से दिया जाए कि देने वाला मुझे और ज्यादा देगा, वो मना किया गया। आप देखिए कि तोहफा किसको कहते हैं, जो किसी से मोहब्बत के इजहार पे दिया जाए, दिल के जज्बात के साथ दिया जाए। लेकिन आज आप देखिए हमारे माशरों के अंदर कुछ तोहफों की हैसियत भी सूद वाली हो चुकी है। मोहब्बत के लिए नहीं देते, रस्म के लिए देते हैं, बातें ना हो इस डर से देते हैं, फलां दे गया था इसलिए देते हैं। शादी ब्याह का लेन देन से लेकर आप देखिए कि घर बनाने और सालगिरह तक के तोहफे क्या होते हैं, वो क्या दे गया था, उसने हमें क्या दिया था, हाँ अब तो देना ही पड़ेगा, हाँ उनको बुलाओ शादी में क्योंकि हमने उनके 3 बच्चों की शादी खाई और उनको तोहफे दिए। ये सब चीजें नापसंदीदा है। अल्लाह ताला आगे भी सूरह मुद्दसिर में कहते हैं वला तमनुन तस्तकसिर, ज्यादा लेने की नीयत से मत दो। तो हर वो लेन देन जिसमें रस्म हो, जिसमें वन साइडेड चीज हो, जिसमें लोगों को मजबूरन देना पड़े, वो चीज तोहफा नहीं होगी बल्कि वो इसी किस्म की नापसंदीदा चीज होगी। और इसको खत्म करना, हौसला करना पड़ता है। लोगों को शर्म आती है जब सब बड़े बड़े तोहफे लेके जाएं और आप खाली हाथ जाएं। कोई बात नहीं, जाइए 1, 2, 4 दफा जाएंगे, आप देखेंगे उसके बाद किसी मौके पे उनको तोहफा दे दें, उनको पता चल जाएगा कि इनके पास पैसों की कमी नहीं, ये देना भी चाहते हैं लेकिन इनको ये रस्म अच्छी नहीं लगी, इसलिए उन्होंने इस मौके पे हमें कुछ नहीं दिया। हाँ बढ़ाना है तो ज़कात को बढ़ाओ, तुम अल्लाह का चेहरा, अल्लाह की रजा पाने वाले होगे। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम सुम्मा रज़क़कुम सुम्मा युमीतुकुम सुम्मा युहयीकुम, अल्लाह ही है जिसने तुमको पैदा किया, फिर तुम्हें रिस्क देता है, फिर वो तुम्हें मौत देता है, फिर वो तुम्हें जिंदा करेगा। क्या तुम्हारे ठहराए हुए शरीकों में कोई ऐसा है जो इनमें से कोई एक काम भी करता हो, पाक है वो जो बाला और बरतर है इस शिर्क से जो ये लोग करते हैं। अल्लाह ताला हमें हर तरह के जाहरी बातनी शिर्क से महफूज रखे। इसको पढ़ते हुए मेरे दिल में एकदम चोट पड़ी, खलककुम रज़ककुम युमीतुकुम युहयीकुम, ऐसे लगता है 4 डोरियों में बंधे हुए हम और डोरी का दूसरा सिरा रब के हाथ में। इतना मजबूर एक इंसान, जी नहीं सकता, मर नहीं सकता, खा नहीं सकता, पी नहीं सकता, फिर उस जात से बेनियाज रहकर क्या एक इंसान ये काम कर सकता है? क्या अल्लाह ताला के साथ हम अपने आप को इस तरह से बेनियाज रख सकते हैं? कितनी जरूरत है हमें अपने मालिक की, लेकिन रवैयों से जब हम ये दिखाते हैं कि हमें इसकी जरूरत नहीं, तो फिर आप सोच लीजिए कि अल्लाह की नजरों में हम कैसे होंगे। अब गुनाहों और शिर्क का असर क्या आता है दुनिया में, बहुत मारूफ आयत है, बड़ी खूबसूरत आयत है, आयत 41, ज़हरल फसाद फिल बर्र वल बहर बिमा कसबत अयदीन नास बिमा कसबत अयदीन नास लियुज़ीक़हुम बअदल्लज़ी यअमिलू लअल्लहुम यरजिऊन। खुश्की और तरी में फसाद बर्पा हो गया है लोगों के अपने हाथों की कमाई से, ताकि मजा चखाए इनको इनके बाजा माल का, शायद कि वो बाज आ जाए। ये कौन से फसाद की बात है, गोलियां चल रही हैं? नहीं, अगर पीछे से सूरत के टेक्स्ट में देखें तो ये वो जंग है जो रूम और ईरान के दरमियान उस वक्त बरपा थी, जिसकी आग ने पूरे मशरक वस्त को अपनी लपेट में ले रखा था। और लोगों की अपने हाथों से कमाई से मुराद जहाँ फिस्क व फजूर और जुल्म और वो जौर है जो शिर्क और अल्लाह ताला को ना मानने के नतीजे में पैदा हुआ, इससे मुराद आखिरत फरामोशी भी है। इंसानी अखलाक और किरदार में पैदा होने वाली वो तब्दीलियां हैं कि जो फितरत से हटते ही इंसान के अंदर आने लगती हैं। और लअल्लहुम यरजिऊन से यहाँ मुराद क्या है कि अल्लाह ताला आखिरत की सजा से पहले इस दुनिया में इंसानों को इनके तमाम अमाल का नहीं बल्कि बाज अमाल का नतीजा इसलिए दिखाता है कि वो हकीकत को समझें, अपने ख्यालात की गलती को महसूस करें और सही अकीदे की तरफ आ जाएं, जो उस दौर के नबियों ने उनके सामने पेश की थी और जिसको इख्तियार करने से इंसान की फलाह है। आज देखिए तो क्या दुनिया में ऐसा ही नहीं हो गया? कहाँ फसाद नहीं है, कहाँ पोल्यूशन नहीं है, जानवर तक महफूज नहीं है, इंसानों के साथ मामला खराब है। कहीं बड़ी बड़ी एनर्जीज के नाम पे इन्होंने दूसरों को एक्सप्लॉइट किया, उसकी वजह से बाद दफा मछलियां तक मर जाती हैं, पैदावार खत्म हो रही है। अल्लाह सुब्हान तआला कहते हैं कि अगर इन सारी बातों से नसीहत लेनी है तो कुल सीरु फिल अर्दि फंजुरू कैफ काना आकिबतुल लजीना मिन कब्ल, करो क्या क्या नबी इनसे कहो कि जमीन में चल फिर कर आए, जो देखो कि पहले गुजरे हुए लोगों का क्या अंजाम हो चुका है, इनमें से अक्सर मुशरिक ही थे। ए नबी, अपना रुख मजबूती के साथ जमा दो इस सच्चे दीन की सिमत में, कबल इसके के वो दिन आ जाए कि जिसके टल जाने की कोई सूरत अल्लाह की तरफ से नहीं है, उस दिन लोग फट कर एक दूसरे से अलग हो जाएंगे। यसदाउन, भला क्यों? क्योंकि हर एक को अपनी फिक्र पड़ी होगी। दुनिया में तो इंसान एक दूसरे के साथ मुरव्वत की वजह से भी साथ देते हैं ना, चाहे उनको अच्छा लग रहा हो या गलत लग रहा हो। क्यामत के दिन ऐसा कोई मोटिव नहीं होगा, लोग फट पड़ेंगे जो बातिल पर इत्तेहाद हुए होंगे, जो हक के खिलाफ जो दोस्तियां हुई होंगी, जो सिर्फ सियासी इत्तेहाद थे, जो सिर्फ वोटिंग के हथियार थे और जो दुनिया में अपनी चदराहट कायम के हथियार थे, सब खत्म हो जाएंगे और लोग अपने असल पर आ जाएंगे। फिर उनको पता चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हुआ और क्या हुआ। होगा क्या उस दिन? मन का फरफा अलैहि ही कुफरुहू, जिसने कुफर किया इसके कुफर का बवाल इसी पर है, और जिन लोगों ने नेक अमल किया है वो अपने ही लिए फलाह का रास्ता साफ कर रहे हैं, ताकि अल्लाह ईमान लाने वालों और अमल साले करने वालों को अपने फजल से जजा दे। यकीनन वो काफिरों को पसंद नहीं करता। इसलिए क्या बतानी है कि ये सब कुछ हो और इंसान उस दिन अपने आमाल की सजा भुगते। ऐसे वक्त में एक इंसान फिर अल्लाह ताला के सामने जब पेश किया जाएगा तो उसको पता चलेगा मैंने क्या किया, और साथ ही ये भी बात है, ये है ना अल्लाह तआला का खूबसूरत मिजाज, एक ही तरफ नहीं झुकाव किया बल्कि दोनों तरफ। तो हमारे लिए अमल की बात क्या है? अपनी हिदायत की फिक्र करो और हर वक्त अपने आप को चेक करो। अब इसके बाद फिर कायनात की कुछ निशानियां हमें ना आती हैं। युरसिल रियाह मुबशिरात, इसकी निशानियों में से ये है कि वो हवाएं भेजता है बशारत देने के लिए और तुम्हें अपनी रहमत से फायदा देने के लिए, और इस गरज के लिए कि कश्तियां इसके हुक्म से चलें और तुम उसका फजल तराश करो और इसके शुक्रगुजार बनो। और हमने तुमसे पहले रसूलों को उनकी कौम की तरफ भेजा, वो इनके पास रोशन निशानियां लेकर आए, फिर जिन्होंने जुर्म किया उनसे हमने इंतकाम लिया, और हम पर हक था कि हम मोमिनों की मदद करेंगे। इसको हाईलाइट कर लें, अल्लाह के ऊपर कोई हक नहीं डाल सकता, जिम्मेदारी नहीं डाल सकता, लेकिन अल्लाह कहते हैं वकाना हक्कन अलैना नसरुल मोमिनीन, तो किस चीज को बढ़ाने की जरूरत है अल्लाह की मदद लेने के लिए? ईमान को। अन्नसरु मा सब्र, रिवायत आती है कि मदद सब्र के साथ है, और सब्र जो है ना ये ईमान के साथ आता है। जितना आपके अंदर ईमान ज्यादा होगा ना उतना आपके अंदर सब्र होगा, सब्र ज्यादा होगा तो ईमान ज्यादा होगा। तो अल्लाह की मदद के लिए दूसरों को देखने की बजाय ईमान बढ़ाएं, अल्लाह फरिश्ते भी उतार देगा, अल्लाह गैब के लश्कर आपके लिए उतार देगा, आपको पता भी नहीं चलेगा आपके काम कैसे हो रहे हैं, अल्लाह ताला खुद बखुद उसके लिए रास्ते बनाएगा। शर्त यह है कि इंसान अपने अंदर ईमान पैदा करे, तदब्बुर की निगाह हो। अल्लाहुल्लज़ी युरसिलुर रियाह, अल्लाह ही है वो जो हवाओं को भेजता है और वो बादल उठाती हैं, फिर वो इन बादलों को आसमान में फैलाता है जिस तरह चाहता है और इन्हें टुकड़ियों में तकसीम करता है, फिर तू देखता है कि बारिश के कतरे बादल में से टपके चले आते हैं, ये बारिश जब वो अपने बंदों में से जिस पर चाहता है बरसाता है तो यकायक वो खुश व खुरम हो जाते हैं, हालांकि इसके नजूल से पहले वो मायूस हो रहे थे। देखो अल्लाह की रहमत के असरात के मुर्दा पड़ी हुई जमीन को वो किस तरह जिंदा कर देता है, यकीनन वो मुर्दों को जिंदगी बख्शने वाला है और वो हर चीज पर कादिर है। और अगर हम एक ऐसी हवा भेज दें जिसके असर से वो अपनी खेती को जर्द पाए तो वो कुफर करते रह जाते हैं। इतनी बड़ी जात है जिसके साथ एक बंदा अपने आप को लगाता है, और हैरत की बात है कि लोगों को इतनी बड़ी जात का ही पता नहीं चलता और वो उसको पीछे डालकर खुद बड़े बनते हैं। अल्लाह अपने नबी को तसल्ली दे रहे हैं, फइन्नक ला तुस्मिउल मौता, पस ए नबी तुम मुर्दों को नहीं सुना सकते, ना इन बहरों को अपनी पुकार सुना सकते हो जो पीठ फेरे चले जा रहे हो, और न तुम अंधों को इनकी गुमराही से निकाल कर राह रास्त दिखा सकते हो। तुम तो सिर्फ उन्हीं को सुना सकते हो जो हमारी आयात पर ईमान लाते हैं और सर तस्लीम खम कर देते हैं। यहां से भी हाईलाइट कर लीजिए, कौन सुन के मानेगा? जिसका दिल जिंदा होगा, जिसके दिल के अंदर हिदायत की तलब होगी। जो अपने आप को मुर्दा कर लेता है उसको ये कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो क्या पता चला कि ये जो आज हम सुनने आते हैं या हम बात को सुन के डरते हैं, इसका ताल्लुक हमारी दिल की जिंदगी से है। जब दिल मुर्दा दिल बन जाता है, वो कहते हैं ना कि दिल मुर्दा दिल नहीं, इसे जिंदा कर दोबारा, कि यही है उम्मतों के मर्द कोहन का चारा। उम्मतों को लगी हुई पुरानी बीमारियों का इलाज क्या है? कि दिलों को जिंदा किया जाए। आज इस वक्त हकीकत में हमें इसी की जरूरत है, और अल्लाह सुबहान तआला से दुआ है कि वो हमें अपने दिलों की फिक्र लगा दे। अल्लाह ताला अपनी जात से निशानियों पे गौर करा के दिल जिंदा कर रहा है, और यकीन करें कायनात पे गौर से बहुत ईमान जिंदा होता है। कभी फारिग हो जरूर देखा करें बाहर, खिड़कियों से देखें, बाहर जाके देखें, कोई बात नहीं, अगर सर्दी है खूब पैन ओढ़ लें और जाएं जरा बर्फ को टच करें, पत्तों पे देखें, क्या कुदरते हैं, छुआ करें, महसूस किया करें। कभी बर्फ को हाथ में लें, कभी पत्तों को छुएं, कभी आप नीचे पड़ी हुई चीजों को देखें, क्या कुछ दिखता है, गौर नहीं करते हम। जितना ऐसा नेचर को देखने वाला वक्त होता है उतना और छुप जाते हैं। हाय नहीं बहुत ठंड है, हाय ये गर्मी हो तो ये मसला है, सर्दी हो तो ये मसला है। अल्लाह सुब्हान तआला कहता है सोचो देखो तुम कितने कमजोर हो। अल्लाहुल्लज़ी खलक़कुम मिन ज़ौफ़िन सुम्मा जअला मिन बादी ज़ौफ़िन क़ुव्वतन सुम्मा जअला मिन बादी क़ुव्वतन ज़ौफ़ान व शैबा। अल्लाह ही तो है जिसने ज़ौफ़ की हालत से तुम्हारी पैदाइश की इब्तदा की, फिर इस ज़ौफ़ के बाद तुम्हें क़ुव्वत बख्शी, फिर इस क़ुव्वत के बाद तुम्हें ज़ईफ़ और बूढ़ा कर दिया। वो जो कुछ चाहता है पैदा करता है, वो सब कुछ जानने वाला है, हर चीज पर कुदरत रखने वाला है। और जब वो सात बरपा होगी, कौन सी? कयामत की सात। युक्सिमुल मुजरिमून, तो मुजरिम कस्में खा खा कर कहेंगे हम एक घड़ी भर से ज्यादा नहीं ठहरे हैं। इस तरह वो दुनिया की जिंदगी में धोखा खाया करते थे, मगर जो इल्म और ईमान से बहरा मन किए गए। हाईलाइट कर लीजिए, दो खूबियां, ऊतुल इल्म वल ईमान। इल्म और ईमान से लैस लोग, इल्म और ईमान से मुनव्वर लोग जो हैं, वो क्या कहेंगे? वो सच कहेंगे। क्या कहेंगे? कि अल्लाह के लिखे हुए में तो तुम रोजे हशर तक पड़े रहे हो, सो ये वही रोजे हशर है, लेकिन तुम जानते ना थे। होगा क्या इस दिन? फयौमइज़िल्लायनफउल्लज़ीना ज़लमू मअज़िरतुहुम वला हुम युस्तअतबून। बस वो दिन होगा जिसमें जालिमों को इनकी माजरत कोई नफा ना देगी, और न उनसे माफी मांगने के लिए कहा जाएगा। आज दुनिया में अल्लाह तआला कितना चाहता है, आओ मेरी तरफ पलट आओ, मैं तुम्हारी तौबा कबूल कर लूंगा, मैं तुम्हें रास्ते दिखा दूंगा, लेकिन तुम्हारे पास वक्त ही नहीं है। लेकिन कल वहां जाओगे, उजर पेश करोगे, या अल्लाह को राजी करने की कोशिशें करोगे, अल्लाह सुबहाना तआला बिल्कुल भी तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। दुआ कीजिए कि अल्लाह तआला आज हमें अपनी इस कमजोरी का एहसास दिलाए। आप देखिए कि ज़ौफ़ और कुव्वत की बात हुई ना, बच्चा दुनिया में आता है कितना कमजोर होता है। माँ उसको अगर पलट के सीधा भी ना करे तो हो सकता है उल्टा ही लेटा रहे, दम घुट जाए उसका, करवट नहीं बदल सकता। लेकिन वक्त के साथ साथ उसकी मोहताजी कम होने लगती है। फिर एक वक्त ऐसा भी आता है कि बिल्कुल ही माँ के हाथों से निकलता है और आगे ही भाग जाता है। अल्लाह के साथ हमारी मोहताजगी जिस दिन हम पैदा हुए थे उस दिन से लेकर मरने तक उतनी ही है जितनी के पहले दिन के इंसान की होती है, और उससे कई गुना ज्यादा। अल्लाह तआला हमें हमारी हस्ती का एहसास दिला दे, फिर बात बनेगी। सारी बातें करके अब सूरत का खात्मा है। वलकद दरबना लिन्नासि फी हाज़ल कुरान। आप नोट करें कि बारे में कुरान का लफ्ज आ रहा है, किताब नहीं कहा जा रहा, बल्कि ये कुरान। हमने इस कुरान में लोगों को तरह तरह से समझाया है, तुम खा कोई निशानी ले आओ, जिन लोगों ने मानने से इनकार कर दिया है वो यही कहेंगे कि तुम बातिल पर हो, यानी कर लो जो करना है, ये कोई नहीं मानेंगे। जो दिल से ये सोच के आए हैं कि तुम गलत हो और हम ठीक हैं, वो कभी भी नहीं मानेंगे। चलो कोई बात नहीं, छोड़ दो इनको इनके हाल पे। इसी तरह ठप्पा लगा देता है अल्लाह इन लोगों के दिलों पर जो बेइल्म है। हाईलाइट कर लीजिए जरा, ला यालमून को, इल्म की बात बहुत आ रही है इधर। इल्म की कमी दिल पर मोहर लगाती है। किस बात की मोहर? हम ठीक है अब क्या करें। यकीन करें मेरा पसंदीदा शुगल है लोगों से पूछना, आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, आपकी क्या रूटीन है, जिंदगी का क्या मकसद। बड़े मुतमईन है लोग, हाँ जी नाश्ता कर लिया, खाना पका लिया, घर बनाते हैं, सफाई करते हैं, जी हम बहुत सेटिस्फाइड है। बस दफा फिर उस चीज की तलब ही नहीं रहती, जरूरत ही नहीं होती का कोई बात नहीं। फसबिर इन वाद अल्लाह हक्कन, फस है नबी सब्र करो, यकीनन अल्लाह का वादा सच्चा है, और हरगिज हल्का ना पाए तुमको वो लोग जो यकीन नहीं लाते। ये है बात असल में। हल्का जानने से क्या मुराद है कि आप दुश्मनों की इन बातों पे दबे नहीं, कमजोर ना पड़े, ये ना सोचें कि शायद ये इस्लाम का कुछ नुकसान कर देंगे, शायद ये मेरी जात पर कीचड़ उछाल कर शायद लोगों को इस्लाम से दूर कर लेंगे। बिल्कुल फिक्र ना कीजिए, अल्लाह ताला आपको बहुत ज्यादा इज्जत देने वाला है। अल्लाह ताला तो आपके नाम को, आपके जिक्र को बुलंद करेगा, इस दीन को होगा। तो बात का खुलासा क्या है कि अपनी सी पूरी कोशिश कर लो और उसके बाद नतीजा अल्लाह पे छोड़ दो। और हकीकत यह है कि एक सच्चे मोमिन की भी यही स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, कोशिश करे, इरादा करे, तड़प रखे, लेकिन अगर उसके बाद भी लोग ना माने फिर मामला अल्लाह पे डाल दे कि अच्छा भाई ठीक है, नहीं मानते तो तुम्हारी मर्जी, वमा अलैना इल्लल बलाग। क्योंकि जब हम लोगों को मनवाने के लिए चल पड़ते हैं ना, तो नतीजा क्या होता है कि फिर हम बार दफा पैगाम को बदल देते हैं। हमारे जिम्मे किसी की हिदायत नहीं है, बल्कि हमारे जिम्मे इबलाग है, पहुंचा दीजिए। अगली सूरत है सूरत लुकमान। लुकमान नाम की एक शख्सियत मक्का में बड़ी मारूफ थी, जैसे आज हमारे अल्लामा इकबाल को एक मुफक्किर के तौर पे सोचा जाता है, इसी तरह लुकमान भी ऐसे ही मारूफ थे। कुरान पाक की खूबी देखिए कि अगर कोई अपने दौर की अच्छी शख्सियत है और उसका पैगाम कुरान और सुन्नत से नहीं टकराता, उसको कोट किया जा सकता है। आज कभी तफसीरों में अगर किसी साइंसदान की बात या किसी मुस्तशरिक की बात कर दी जाए तो बाज लोग इस पे भी बहुत ज्यादा बुरा मनाते हैं, लो जी ये तो ऐसी बातें बयान करते हैं। लेकिन आप बात को देखिए कि बात क्या है। फिर दूसरी बात है कि सूरत के अंदर लुकमान के अपने बेटे के लिए कुछ नसीहतें हैं, जिससे पता चलता है कि औलाद की बेहतरीन रहनुमाई हर एक करना चाहता है, लेकिन कैसे करेंगे वो हम इंशाल्लाह आयतों में देखेंगे। इस पूरी सूरत को अगर आप देखें तो ये जुल्म और जबर के दौर में नाजिल हुई, हर तरह के हथकंडे इस्तेमाल किए जाते थे। अभी तूफान मुखालफत उतनी शिद्दत पर नहीं पहुंचा था जितनी के बाद में हुई, लेकिन नौजवानों को निशाना बनाया जा रहा था, माँ बाप की तरफ से इस तरह से थ्रेटनिंग हो रही थी, और इस सूरत से पहले कुछ इस किस्म के हालात थे कि जिससे मक्का वालों ने नबी सल्लम के सच्चे दीन के रास्ते में कुछ इस तरह की खूबसूरत चीजें पेश की जिसको लाहुल हदीस कहते हैं। इंशाल्लाह आयतों के साथ उस पर भी बात होगी। लोगों को ये बता दिया गया कि ये होके रहेगा, जिस बात से तुम डरते हो वही होगा। इस नबी की दावत सच्ची है, कुरान सुन्नत की है, तुम बाप दादा की अंधी तकलीद को छोड़ दो, खुले दिल से उस तालीम पे गौर करो जो अल्लाह का नबी पेश कर रहा है। तासुब छोड़ो, दिल से बदगुमानियां निकालो, साफ दिल लेकर बैठो और फिर सुनो, फिर तुम अपने दिल से पूछो कि इसने क्या बातें कही हैं, इसमें क्या गलती है। आइए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। तिल्क आयातुल किताबिल हकीम हुदन व रहमतन लिल मुहसिनीन। सूरत लुकमान के आगाज को आप सूरत बकरा के साथ टैली कीजिएगा, भी आप देखिएगा बहुत मिलता जुलता है। इसमें भी हरूफ मुकत्ता आता है, उसमें भी कुरान की बात थी शुरू में, उसमें मोमिनों की सिफात थी, यहाँ मुहसिनीन की सिफात है, उसमें भी आगे मुनाफिकों की बातें हैं, इसमें भी कुछ ऐसे ही है। तो ये खूबसूरत सी मुमासलत है कि थोड़े अरसे के बाद अल्लाह ताला फिर वही अंदाज बदल कर लोगों को रिमाइंड कराते हैं। अलिफ लाम मीम, ये किताब हकीम की आयात है, यानी किताब भी हिकमत वाली है भी अल हकीम की तरफ से। ये नुक्ता बहुत ही खूबसूरत है कि किताब हिकमत वाली है, इसकी बातें हकीमाना है, और अल हकीम की तरफ से नाजिल करदा है जिसने कोई हुक्म हिकमत के बगैर नहीं दिया। हुदन व रहमतन लिल मुहसिनीन, हिदायत और रहमत है नेक काम करने वालों के लिए। मुहसिन कौन होता है, आइए उसकी अलामतें देखते हैं। अल्लज़ीन युकीमून अस्सला, पहली सिफत मुहसिन की यहाँ क्या है, जो नमाज कायम करते हैं। कअन्नक तराहू, जो नमाजों में अपने रब को देख रहे होते हैं। फिर ज़कात देते हैं और आखरत पर यकीन रखते हैं। सिर्फ तीन चीजें इधर मुहसिन बनने के लिए, और देखा जाए तो इन तीन चीजों में पूरे का पूरा दीन आता है। लेकिन क्या सिर्फ इन तीन चीजों की बात है, बाकी नहीं, इन तीनों पे अमल कर लें सब कुछ आ जाएगा। किताब पर ईमान, नमाजों पर ईमान, ये हर बुराई से इंसान को रोक देता है इन्हीं तीन चीजों पर तो इंसान की सारी नेकियों का दारोमदार है। जिसकी नमाज ठीक हो जाएगी, उसकी अल्लाह ताला के सामने खड़े होने की आदत पक्की हो जाएगी, ज़कात के जरिए से इसार और कुर्बानी का जज्बा आ जाएगा, दुनिया की मोहब्बत दब जाएगी और आखिरत पर यकीन इंसान को हर गुनाह से बचा लेता है और वो जवाबदेही के एहसास के साथ जीता है। वो एक शुतर बेमुहार की तरह नहीं फिरता रहता कि जिधर जाए अपना मुंह मार ले, हलाल मारे या हराम में मारे। वो सिर्फ दुनिया की खुशी को नहीं देखता, वो आखरत की खुशियों को भी देखने लगता है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, उलाइका ला खुदा मिर रब्बिहिम, ये है असल में हिदायत पर अपने रब की तरफ से, और यही लोग फलाह पाने वाले हैं। इसके बरक्स वमिनन्नासि मन यश्तरी लहवल हदीस, और इंसानों में कोई ऐसा भी है जो कलाम दिल फरेब खरीद लाता है। ये कौन सा, इसके नीचे लिख लीजिए नजर बिन हारस। अल्लाह के नबी सल्लम की दावत जब आम हुई, लोगों के दिलों पर इसका असर होता था, हालांकि वक्त और माशरे के रिवाज से बहुत मुख्तलिफ तरीका था नबी सल्लम की तबलीग का। इसके बावजूद लोगों का दिल लगा रहता था, लोगों को उसमें मजा आता था। लोगों ने सोचा कि अब इस चीज से लोगों को कैसे हटाएं। जब लोग ना हट सके तो नजर बिन हारस एक शख्स जो था, ये मुल्क शाम गया, वहां से रुस्तम और इस्फंजार कुछ इस तरह के वहां के किरदार थे, उनके किस्से लेकर आया, दास्तान गोई शुरू की, लौंडियों और गाने बजाने वालियों का इंतजाम किया। जिन रास्तों से लोग दीन सीखने अल्लाह के नबी के पास जाते, वहां वो लौंडियों को मुकर्रर कर देता और कहता इनको अपने दाव फरेब से लाओ। आज भी ऐसे ही कुछ डिस्ट्रेक्शंस के पॉइंट हमारे भी रस्तों में होते हैं। ये तो अल्लाह जिसको ले आए तो आ जाए इंसान, वरना तो मुश्किल है। अल्लाह कहते हैं ऐसे लोग कलामे दिल फरेब खरीद लाते हैं ताकि लोगों को अल्लाह के रास्ते से इल्म के बगैर भटका दे और इस रास्ते की दावत को मजाक में उड़ा दे। ऐसे लोगों के लिए सख्त जलील करने वाला असाब है। इसका हाल क्या है? इससे जब हमारी आयात सुनाई जाती हैं तो वो बड़े घमंड के साथ इस तरह रुख फेर लेता है गोया कि इसने इन्हें सुना ही नहीं, गोया कि इनके कान बह रहे हैं। अच्छा, खुशखबरी सुना दो उसे एक दर्दनाक अजाब की। अलबत्ता जो लोग ईमान ले आए और नेक अमल करें, इनके लिए नेमत भरी जन्नतें हैं जिनमें वो हमेशा रहेंगे। अल्लाह का पुख्ता वादा है और वो जबरदस्त और हकीम है। यहाँ बात हुई थोड़ी सी लाहुल हदीस की। लाहुल हदीस के अंदर हर वो चीज जो अल्लाह की हिदायत के रास्ते में आ जाए, बेकार बेमकसद चीज, हर वो चीज जो इंसान को अपने अंदर मशगूल कर दे और अहम चीज से हटा दे। ये नोट कर लें बात, क्या इसकी खूबी है? है बेकार चीज, लेकिन लोग उसमें इतने इन्वॉल्व हो जाएं कि अहम चीज से गाफिल हो जाएं। अब आप बताइए जरा, आज क्या नमाज कब छूटती है? जब अपनी पसंद के ड्रामों में और फिल्मों में। गाने का क्या असर है? कुरान अच्छा नहीं लगता। यानी आज पूरी इंसानियत इस लहवल हदीस के चुंगल में इस तरह से फंस दी गई कि नेकी नेकी न रही, बदी बदी न रही। हर बंदा अपने ही कामों के अंदर पहुंचकर अपनी ही इन चीजों के अंदर लगा रहता है। और आज याद रखिए कि हमारी नस्लों के ऊपर जो जाल डाले जा रहे हैं वो लहवल हदीस के हैं। इतनी बेकार चीजें उनको आम कर दो, अगर हमने उनकी तरबियत नहीं की तो हर वक्त हाथों में बटन चलाते हुए वो रास्तों पे चलते हुए भी इसी तरह की चीजें देखेंगे। आप ऑब्जर्व किया करें, कभी बस में जाके देखें, कभी आप ट्रेनों में जाके देखें। मैंने ये चीज सिंगापुर में नोट की, ये रिसेंटली एक एक्सपीरियंस की बात है। वहां पे 98% लोग ट्रेनों में सफर करते हैं। यानी लीगली गवर्नमेंट ने गाड़ी रखना इतना मुश्किल कर दिया है कि शायद $1 लाख और उसके अराउंड कुछ सिक्योरिटी वो लेते हैं गाड़ी खरीदने वाले को, क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे मुल्क में गाड़ियां ना रहें और हमारा मुल्क जब वो पॉल्यूशन फ्री रहे। ट्रेनों का सिस्टम बहुत अच्छा है, तो जहां भी जाना होता था मोस्टली हम ट्रेन पे जाते थे और आम सफर 45 मिनट का एक जगह से दूसरी जगह था, तो कभी जगह बैठ के मिलती, कभी खड़े होके मिलती। मैंने आते में भी नोट किया और जाते में भी। अब जैसे अगर एक कैबिन में बैठे हैं तो आपकी हदे निगाह में जितने भी लोग हैं, तो मैंने गिनना शुरू किया। यकीन करें सिर्फ दो लोगों के सिवा बाकी पूरे ट्रेन का जो डब्बा था ना, उसमें हर बंदा अपने हाथ में आईफोन और गिट 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 और कानों को लगा है, कोई हंस रहा है, कोई मुस्कुरा रहा है, कोई गुनगुना रहा है। किसी को इतनी भी होश नहीं कि मैं कहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं। और वो भी जो दो लोग मेरी नजर में आए वो जरा उधेड़ उम्र के थे, यानी उनको शायद नेट इतना पसंद नहीं होगा। मैं सोच में थी कोई खड़ा है, जगह मिली है कि नहीं मिली, कोई किसी पिलर से खड़ा है, कहीं नजरें इधर है, चढ़ते उतरते सड़कें पार करते उनकी नजरें अपने हाथों में इन गैजेट्स पे। ये छोटे छोटे पुर्जों ने इंसानों की जगह ले ली। कुछ नहीं पता किसी के साथ क्या हो रहा है, कौन क्या है, इतना गाफिल कर दिया इन चीजों को। अल्लाह करे कोई कुरान और हदीस ही सुनते हो, वो भी सुन सकते हैं आप इसमें से, बहुत कुछ है। लेकिन अमूमन लोग आप देखे कि इन चीजों में खो जाएं, इतना शैतान ने मसरूफ कर दिया आज भी इंसानों को कि सोचने का वक्त नहीं रहा। इतने खूबसूरत सीन वहां भी गुजरते थे, मेरी आदत है देखने की बाहर, तो मैं सोचती थी इतना कुछ बाहर छोड़ के ये पता नहीं अपनी आंखों को किस तरह खराब कर रहे हैं। तो याद रखिए कि ऐसी चीजें, ऐसा कल्चर और ऐसे खेल तमाशे आम कर दिए जाएं कि जिंदगी के संजीदा मसाइल की तरफ तवज्जो ही न रहे, फिर अल्लाह की तरफ कोई कैसे सुनेगा। अब्दुल्ला बिन मसूद से किसी ने पूछा कि लाहुल हदीस से क्या मुराद है, तो 3 बार बोले जोर देकर, हुआ वल्लाही अलगिना, कहने लगे वो अल्लाह की कसम गाना है, इससे मुराद गाना है, इससे मुराद गाना है। इसी तरह की राय इब्ने अब्बास की और बहुत सारे और लोगों की भी है। इसी तरह गाना गाने वाली औरतों और उनका बेचना, उनकी तिजारत करना, ये सब कुछ इसमें आता है और हदीस में आता है कि ये हलाल नहीं है। आपने फरमाया एक वक्त आएगा कि गाने वालियां जो हैं वो उन लोगों के सरों पे चढ़ेंगी, और आज आप देखिए कानों में आपके, कंधों पे आपके, आपके साइड टेबल्स पे, आपके बेडरूम में, कहाँ तक ये चीजें नहीं घुस गई। छोटे छोटी उम्र तो छोड़ दीजिए, बड़ी उम्र के लोग जो हैं वो इस किस्म की चीजों में परेशान है, और इसका असर क्या है, आज खानदानी जिंदगी खराब हो रही है, आज शौहर बीवी के ताल्लुकात को घुन लग रहा है। वो पाक रिश्ता जिसको अल्लाह ताला ने इबादत का रिश्ता बना दिया था, आज क्यों इस किस्म का हो गया, यकीन कीजिए। यानी बहुत पहले की बात है, मेरे पास चंद बुजुर्ग खवातीन, यानी बुजुर्ग मैं उनको कहती हूँ कि जो औरतें अमूमन आप इस किस्म के जज्बाती और इमोशनल फीलिंग्स की उम्र से भी गुजर रही होती हैं, 40 40 के बीच में के, उन्होंने मेरे सामने आकर इतना रो रो के अपना दुख बयान किया था कि अल्लाह के लिए हमारे मर्दों को कोई आके समझाए कि अब इस उम्र में हमसे ये गंदगी ना करवाएं। जो गंदे तकाजे उनके, जो आज तक उन्होंने काम हमसे नहीं करवाए, वो अब हमें मजबूर करते हैं। घर घर में तलाकें हो रही हैं, मर्द कहते हैं हमारी गलत बातें मानो, अब हम कहाँ जाएं। अब आप बताइए, ये किसी यंग बच्ची की बात नहीं है, ये उधेड़ उम्र की बात है। क्यों पहले ये बातें नहीं थी, इसलिए कि लाहुल हदीस आम है। अल्लाह के नबी ने जो तज़किया किया था ना, वो फर्द का किया था, यग़ुद्दु मिन अबसारी, पहले नजर झुकी, यग़फ़ज़ु फ़ुरूजहुम, शर्मगाह खुद ही छुप जाएगी। ये कैसे हो सकता है कि नजर तो पाक ना रहे और उसके बाद फिर हम इन चीजों पे अपने आप को रोकें। तो इतना जरूरी है इस वक्त अपने आप को बमकसद करना, किसी इंसान को बेकार ना छोड़ें। इसी तरह कई और कहानियां, अल्हम्दुलिल्लाह लोगों से बहुत कुछ सीखती हूं मैं। हर मर्द मसरूफ होता है, बहुत अच्छा रहता है, लेकिन एक बहन थी, मियाँ किसी वजह से, किसी ऐसी काम से जो बहुत हार्ड वर्किंग था, उससे हटके बहुत इजी सी किसी ऐसी जॉब पे आ गया जहां औरतों और लड़कियों की आमदोरफ्त भी बहुत थी। वो कहती है मैं अपने मर्द के मिजाज में इतनी चेंज देख रही हूँ, शरीफ उत्तबा इंसान, सारी जिंदगी इसने मुझे किसी बात पे तंग नहीं किया, लेकिन जब से ये उस मुश्किल काम से आके इस ऐसी काउंटर पे बैठ गया, अब इसकी टोन बदलती जा रही है। आप क्या कहेंगे, इसलिए कि लाहुल हदीस जिंदगी में आ गया। अल्लाह से दुआ कीजिए कि आज के बाद जो हमारी नस्लें आ रही हैं, इनका क्या बनेगा। मुझे तो इस गम ने इतना ज्यादा दुखी किया हुआ है कि अल्लाह हम अपने पीछे किनको छोड़ रहे हैं। कल इन चीजों को बुरा समझते थे, आज इसको लीगलाइज करके सनद के साथ जो है साबित कर देते हैं। तो अल्लाह से दुआ कीजिए कि आज हमारी नस्ल को इस चीज से बचा ले, और आज दुश्मन का जाल ही यही है। अल्लाह ताला कहते हैं इन लजीन युहिब्बून अन तशियल फाकिहतु फिल लजीन आमनु, पढ़ चुके हैं सूरत नूर में कि कुछ लोगों का तो गोल ही है कि ईमान वालों में खराबी फैले। अपने मुल्कों में वो चीज बैंड होती है जो दूसरे मुल्कों में आम कर देते हैं। इस वक्त मौका नहीं है, इतनी मिसालें मौजूद हैं, हम अपने मुल्कों की हालत जाके देख लेते हैं, वो चीजें जो हमने खुद आज से 8 10 12 साल पहले नहीं देखी थी। कोई बहुत अरसा नहीं हुआ हमें अपने मुल्कों को छोड़े हुए, लेकिन आज यकीन नहीं आता ये हमारे मुल्कों के चैनल है। यकीन करें कहीं भी जाते आते अगर नजर पड़ी है तो एकदम दिल में आया कि इन लोगों ने कोई वेस्टर्न या कम अज कम हमारे नेबर्स का कोई चैनल खोला हुआ है, और जब उस पर नीचे कोने साइड में अपने मुल्कों का नाम लिखा होता है तो मेरी अक्ल गुम हो जाती है। और ये क्या है देख रहे हैं आप, नहीं खबरें सुन रहे थे, भी खबरें किधर गई, वो खबरों के बीच में इतने लंबे ऐड हैं और वो ऐडों में सब कुछ दिखाते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह मुसलमान को समझ दे, चीजें नहीं बिकती हमारी लाहुल हदीस के बगैर और इस तरह की चीजों के बगैर। अल्लाह ताला कहते हैं इसका नतीजा ये होता है कि इंसान फिर अल्लाह की आयतों का मजाक उड़ाने लगता है। अल्लाह ताला से दुआ कीजिए कि अल्लाह हमें इस जुर्रत से बचा ले। अल्लाह को नहीं देखते जिसने खलकत समावाति बगैर आमदिन तरौनहा, इसने आसमानों को पैदा किया बगैर सतूनों के जो तुमको नजर आए, इसने जमीन में पहाड़ जमा दिए ताकि वो तुम्हें लेकर ढुलक न जाए, उसने हर तरह के जानवर जमीन में फैला दिए और आसमान से पानी बरसाया और जमीन में किस्म किस्म की उम्दा चीजें उगा दी। ये तो है अल्लाह की तखलीक, आप मुझे बताओ जरा इन दूसरों ने क्या पैदा किया। कितना चैलेंजिंग स्टाइल है, अल्लाह अकबर। दूसरे क्या करते हैं। असल बात यह कि ये जालिम लोग सरीह गुमराही में पड़े हुए हैं। असल बात यह कि लोगों को समझ नहीं आती कि ये क्या कर रहे हैं और किस तरह से कर रहे हैं। तो यहाँ आप देखिए कि किस तरह से अल्लाह ताला ने खोल के रख दिया। अब इसके बाद हमारा रुकू तो शुरू हो रहा है, नेक्स्ट हमारा जाके आयत 14 पे होगा, लेकिन चूंकि बात शुरू होगी और उसको फिर इंशाल्लाह एक ही स्ट्रेच में सुनेंगे तो फायदा होगा, इसलिए हमारा ये रुक जो है इसी आयत पे रोकते हैं। इंशाल्लाह ताला अगले रुक को हम आयत नंबर 12 से लेंगे। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक। और खास तौर में उसमें फिर बच्चों की तरबियत पे हमें कई इशारे मिलेंगे, खास तौर पे अभी जो हम लाहुल हदीस पे बात कर रहे हैं तो क्या तरीका है तालीम है कि जिसकी वजह से इंसान अपने बच्चों को सही तरह से अल्लाह की तरफ ले जाए। अल्लाह ताला हमें हक बात कहने की तौफीक अता फरमाए।